ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी पहुंचे हैं। आप साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए, बहुत समय साकार बाबा के साथ रहे हुए, पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया है आपको ज्ञान में चलते हुए। और आप वैसे तो लौकिक में इंजीनियर हो, अपनी जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, और साथ साथ विहंग मार्ग की सेवाओं में विदेश में भी आपका कई बार जाना हुआ है, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश आदि स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो अभी आप हमारे बीच में साकार बाबा के समय का इनका विशेष अनुभव ये भी है कि 18 जनवरी 1969 के समय पर बाबा का जो अव्यक्त दिवस होने का था उस समय पर आप यहाँ पर ही बाबा के साथ थे, तो हमें इनके अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को भी मिलेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। एक बार सब हमारे साथ बोले, ओ शांति। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है जिसमें स्थित होने से बाकी आत्मा के सभी गुण है उनमें भी स्थिति सहज हो जाती है। इस संगम युग पर बाप दादा हम बच्चों को जो भी रोज ज्ञान सुनाते हैं, जो भी ईश्वरीय प्रेरणाएं देते हैं, उन सभी का लक्ष्य विशेष यही है कि आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। और आज का जो विषय हमें दिया गया है, प्रकृति पर विजय, तो वह विषय भी इसके साथ बहुत लगता हुआ है, क्योंकि हम सभी विजय चाहते हैं। हर एक मनुष्य जीवन में विक्ट्री, विजय, सफलता चाहता है, क्योंकि जितना जितना सफलता और विजय होती चली जाती है उतना क्या होता है, खुशी होती है, आनंद होता है, उतना उतना जीवन में उमंग, उल्लास बढ़ता है और साथ ही साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणाएं और बलवती होती चली जाती है। और बाबा ने ये भी बताया ही है कि अनेक बातें ज्ञान में बाबा ने बताई हैं जो कि हम बच्चों को करनी है और करते भी हैं। बाबा ने अनेक प्रकार के पेपर हम बच्चों के सम्मुख बताए हुए हैं, कुछ है उनमें जैसे कि स्थूल पेपर, जैसे कि ऐसा समय आएगा जब आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, खाना पीने की वस्तुएं हैं, इन सब जैसे ये सब खाना होगा, खाने लायक नहीं होगा, पानी होगा, पीने लायक नहीं होगा, वायु होगी श्वास के लिए आवश्यक है लेकिन वो भी इतनी ज्यादा प्रदूषित, जहरीली हो जाएगी कि श्वास लेना भी कठिन हो जाएगा। और ऐसा एक ये पेपर, पुराने जो संस्कार हैं, स्वभाव है, उनका पेपर बाबा ने बताया है, विकारों का पेपर, प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर, और जो अशुद्ध भटकती हुई आत्माएं हैं उनका पेपर, ये सब पेपर आएंगे। और चारों तरफ जब बहुत अति हलचल होगी उसमें पास होने का साधन क्या है? अति अचल। बाहर हलचल हो, अंदर हम अचल हो। तो ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाती है तो हम जैसे कि प्रकृति पर विजय पा लेते हैं। प्रकृति शब्द के भी दो अर्थ बाबा ने बताए हैं, मालूम है ना? एक है बाहर की ये प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो पांच तत्व हैं। और एक प्रकृति है हमारे अंदर की प्रकृति, हमारा स्वभाव, संस्कार। कहते हैं ना, मेरी नेचर ऐसी है, मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरा स्वभाव ये है। तो ये दोनों प्रकृतियों का आपस में गहरा संबंध है और इन दोनों प्रकृतियों पर ही हमें जैसे विजय प्राप्त करनी है। तो अंदर की प्रकृति पर तो विजय प्राप्त करने के लिए रोज हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सब करते हैं। और जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन पर ज्ञान योग के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन विशेष जो बाबा ने एक ये पेपर बाहर की प्रकृति का बताया है, इसको भी जीतना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये प्रकृति का पेपर ऐसा है, और पेपर जो होते हैं लौकिक दुनिया में उनका तो क्या है, पेपर में क्या आने वाला है वो मालूम नहीं होता, बाकी सब मालूम होता है। किस दिन कौन सा पेपर होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, कितने समय का होगा, कौन सी जगह एग्जामिनेशन सेंटर है, वो सब पेपर मालूम होता है। लेकिन क्या पेपर में आने वाला है बस वो मालूम नहीं होता। और यहाँ एकदम उससे उल्टा है, क्या पेपर आएगा वो मालूम है, लेकिन कब आएगा, कितने समय का आएगा, कहाँ आएगा, वो सब कुछ नहीं मालूम। इसलिए अभी सब जो मालूम है क्या आने वाला है उसके आधार पर हमें अपने सब पेपर्स की तैयारी करनी है। क्योंकि किसने कितना पढ़ा है वो पेपर से ही तो पता चलता है, और जितना व्यक्ति ने पढ़ा हुआ होता है, अच्छा पेपर लिखता है, उतनी ही उसे सफलता मिलती है। तो ये प्रकृति का जो है, क्योंकि संसार को कहा जाता है ये संसार एक खेल है। कौन सा खेल? पुरुष और प्रकृति का खेल है यह संसार। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात ये पांच तत्वों से बना शरीर। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो खेल खेलती है, पार्ट बजाती है। तो ये पुरुष और प्रकृति का खेल जो है बहुत वंडरफुल खेल है। तो हद के सेंस में तो ये पुरुष और प्रकृति का खेल, और बेहद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा का, और ये जो पांच तत्व हैं बाहर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो मांडवा है, संसार है, इसमें यह जो खेल चल रहा है पूरे संसार का। तो इसीलिए पुरुष और प्रकृति के इस खेल को जितना जितना हम इसके गुह्य राज को समझते जाते हैं उतना उतना हम इसमें सफलता पाते जाते हैं। इसको समझना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो खेल है प्रकृति का, बाबा ने पूरे ज्ञान का सार जो बताया है, रोज बाबा इतने समय से ज्ञान सुना रहे हैं, और ज्ञान का सार जो पेपर आएगा वो एक सेकंड का अंत मते सो गति का पेपर। हमारा सारा पुरुषार्थ ही उस अंतिम एक सेकंड के लिए हो रहा है, अंतिम क्षण के लिए हो रहा है, जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे उस समय जैसी हमारी स्मृति होगी, वृत्ति होगी, अंत में मति होगी जैसी, वैसे उसी आधार पर ही हमारा अगले सारे जन्म होंगे, अंत मते सो गति का। तो इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ उस घड़ी के लिए है, अंत में कैसी हमारी स्मृति हो, वृत्ति हो, अंतमते सोगते का। और बाकी सब पेपर तो बाबा ने बताए हैं, लेकिन ये जो पेपर है ये पता ही नहीं चलता, जो प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर है, एक सेकंड पहले भी पता नहीं चलता भूचाल आने वाला है, धरती हिलने वाली है, बस धरती हिली, चारों तरफ त्राही त्राही मची, हाहाकार, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। ऐसे समय में अगर संसार की तरह हमारा भी अगर देह त्याग हुआ तो क्या होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, बिल्डिंग गिरी होंगी, खून खराबा होगा, फ्रैक्चर होंगे, हड्डियां टूटी होंगी, चारों तरफ जब ऐसा वातावरण, उस समय संसार भी शरीर छोड़ रहा होगा, अन्य आत्माएं, उस समय अगर हमने भी शरीर छोड़ा वैसी हमारी भी गति हो जाएगी, अंतमति सो गति। बाढ़ अभी बहुत उत्तराखंड और यूपी की तरफ बहुत बाढ़ आई हुई है, बस बादल फटे एकदम, इतना इतना ऊंचा पानी नदियों में आ गया, और ऐसा एक मिनट पहले भी पता नहीं था, बादल फटा तुरंत बाढ़ इतनी ज्यादा आ गई, कई फीट ऊंचे पानी आया और हजारों लोग उसमें बह गए। ऐसे ही सुनामी में सुनाई था आपने, बस सुनामी की लहर चली, इंडोनेशिया से भारत तक आई, और बस इतनी देर में ही, जरा सी देर में 2.25 लाख लोग उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो जब ऐसी अंतमति सो गति की स्थिति होने वाली है, ये पेपर आएगा और इसके साथ ही पुराने स्वभाव संस्कार का पेपर आएगा, सारे पेपर एट ए टाइम जब आएंगे उसके लिए हमें तैयारी करनी है। इसीलिए बाबा ने ये पेपर दिया है, ये बताया है प्रकृति पर विजय कैसे हो। हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, बाबा ही हमारा रोल मॉडल है, अभी तक बाबा ही साकार ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जिसने अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करके बस नंबर वन प्राप्त किया। तो बाबा ने क्या क्या किया, हमने क्या देखा, और अंत समय में 2 दिन में 17 और 18 जनवरी को जब बाबा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए थे, उस समय भी हम यहाँ मधुबन में आ गए थे, और 2 दिन में बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी उसके कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य है संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, हम सभी चाहते हैं ना, तो इसीलिए। तो पहले तो जब बाबा से मिलते थे हम लोग देखते थे, सुना है बाबा मिलते थे, बहुत समाचार पूछते थे, समय देते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा जब संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होते जा रहे थे, पहले बाबा हर बच्चे को 15-20 मिनट आधा घंटा भी देते थे, फिर धीरे धीरे कम होते होते बीच में 65-66 में 67 में देखा, बस बाबा के सम्मुख गए, थोड़ी सी बात सुनाई, बस बाबा कहते थे बच्चे समझ गया। लेकिन और अंत में 69 में 1969 में 17-18 जनवरी का हमारा अनुभव है, बाबा के पास जाते थे, उस समय हम आसाम में थे बहुत दूर, बस बाबा ने जैसे युक्ति से बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर बाबा के पास पहुँच गए। तो 17 और 18 जनवरी को हम बाबा से कई बार मिले, 6-7 बार। अब बाबा को ये सुनाएंगे, ये सेवा का समाचार, ये पुरुषार्थ की बात, ये समाचार किस प्रकार से और आगे बढ़ना है आदि आदि। बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे जरा सी दृष्टि देते थे, बस थोड़ा दृष्टि दी, मन का हाल बाबा जान जाते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा जैसे मन की बात समझ करके और उसका समाधान भी दे देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार, छह सात बार ऐसा दो दिन में हुआ। और ये है एक संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की निशानी जो बाबा हम बच्चों को भी चाहता है और जिसके लिए बाबा ने पिछले कुछ वर्षों से हमें पुरुषार्थ दिया हुआ है। कौन सा? मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अपने मन के संकल्पों पर इतना विजय प्राप्त कर ले जो दूसरे के मन के संकल्पों को हम तुरंत पढ़ सकते हैं। अगर हमारे अपने मन के संकल्प चल रहे होंगे, मन में कोई संकल्पों की लहरें होंगी, हम दूसरे के संकल्पों को नहीं जान सकते। और जब तक दूसरे के संकल्पों को जानेंगे नहीं, उनको हम संपूर्ण कैसे करेंगे? तो इसलिए पहली बात ये आवश्यक, क्योंकि मन के संकल्प हैं जैसे पानी में लहरें की तरह। पानी है, बहुत स्टेबल है मानो, पानी में लहरें नहीं है, उसमें हम अपनी छवि भी देख सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा पत्थर भी आप पानी में फेंक दो, लहरें पैदा होंगी, पानी में हलचल होगी, उसमें हम अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो दिखाई देगा स्पष्ट? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर लहरें हैं। ऐसे ही अगर हमारे मन, अपने मन के अंदर कोई भी संकल्पों की लहरें हों, भले व्यर्थ संकल्प नहीं, विकारी संकल्प नहीं, लेकिन कोई भी सेवा के संकल्प भी होंगे, बाबा ने कहा है जिस समय जो संकल्प उठाना चाहें उस समय वो ही संकल्प उठे। योग करें और सेवा के संकल्प आ जाएं, वो भी यथार्थ नहीं है। इतने तक बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। तो अब कोई भी संकल्पों की लहरें न हो तो क्या होगा, हम दूसरी आत्माओं को के संकल्पों को सहज पढ़ सकेंगे। और वो आत्मा जब हमारे सम्मुख आएंगे, अभी दो दिन पहले ही बाबा ने कहा ना, हम सब कौन हैं जो आने वाली प्रजा है, उनके हम कौन हैं? इष्ट देव, इष्ट देवियां हैं। इष्ट देव होता है उसका कर्तव्य होता है, जिसका भी वो इष्ट देव है उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तथास्तु। भक्त के मन में कोई भी इच्छा होती है, बस भगवान जान जाते हैं और एक शब्द बोल के अंतर ध्यान। हमारा भी ये अनुभव है 18 जनवरी का, सामने हिस्ट्री हॉल में बाबा अपनी अंतिम मुरली साकार सुना रहे थे, हम सामने बैठे हुए थे, दादी जी भी आगे बैठे थे, बस बाबा मुरली चला रहे थे। मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में संकल्प आया, जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते हैं गुलजार दादी जी के द्वारा, बस सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मन में ये भी संकल्प होता है, चलो हमें स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, चलो बाबा से व्यक्तिगत दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, होता है ना ऐसे ही। उस समय भी 69 की बात है, सम्मुख मुरली सुन रहे थे, मन में संकल्प आया बाबा कुछ हमारे लिए बोले जिससे हमारा और पुरुषार्थ में और बल आए। बस मन में संकल्प आने की देर नहीं थी, बाबा तो हमारा इष्ट देव है। भक्ति मार्ग में विभिन्न नाम रूपों में बस बाबा के साथ रहे, तो बस जैसे ही संकल्प हुआ तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा और दूसरे ही क्षण बाबा ने मुरली में बस नाम लेकर के अनेक महावाक्य उच्चार दिए जो बहुत हमारे पुरुषार्थ को आज भी विशेष दिशा प्रदान करते हैं। देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत अच्छा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे आदि आदि। बस ऐसे बाबा ने दिशा बिल्कुल बहुत ऐसा बोला। तो मुख्य बात क्या है कि चूंकि बाबा की अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय थी, तुरंत ही दूसरे के संकल्प को पढ़ के उनको पूर्ण किया। आज हम सब भी हाँ ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, हम सब ब्रह्मचारी तो बन गए हैं, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए। तो बाबा का ये देखा भक्त के मन में, हम भी अनेक जन्मों के भक्त है ना, आज बोला या कल बोला बाबा ने ना, बस कौन जो बच्चे हैं जिन्होंने एकदम सबसे ज्यादा भक्ति की होगी 63 जन्मों की, वही क्या बनेंगे? हाँ, वही 21 जन्मों का राज्य अधिकार लेंगे। तो हम सब भी भक्त आत्मा है इतने 63 जन्मों की, और अब बाबा ने को पहचान करके बाबा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसा ये देखा, ऐसे ही बाबा अब चाहता है हम बच्चे भी ब्रह्मा बाप के समान बने, और जो भी भक्त आत्मा अपनी इच्छाएं लेकर के आए उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण करने के निमित्त बने। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा है ना, जब यज्ञ की स्थापना हुई बस बाबा के सम्मुख जो जाता था बाबा को देखता था, बाबा कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, बाबा के सम्मुख जाते थे तुरंत उन्हें कृष्ण का, नारायण का, स्वर्ग का, नई दुनिया के साक्षात्कार होते थे, सब रास करते थे, खेल कूदते थे, क्योंकि बाबा वो आत्मा थी। तो हम सब भी वो ही आत्मा है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है यज्ञ इतिहास में कि कुछ विरोधी भी थे और एक सरदार जी भी विरोधी थे, उन्होंने निश्चय किया कि मैं ब्रह्मा बाबा को जैसे मार दूंगा। इतिहास में पढ़ा है ना आपने, वो छुरी लेकर के आए ब्रह्मा बाबा के सम्मुख, बहन से बोला बाबा से मिलना है, साधारण रीति से बहन ले गई, बाबा के सम्मुख बैठा दिया, बहन तो अपने काम में चली गई, और जब उन्होंने देखा एकांत है, छुरी निकाली और बाबा पर वार करने ही जा रहा था, तो क्या हुआ, उन्हें गुरु नानक देव का साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा गुरु नानक देव में थी, श्री कृष्ण में या नारायण में नहीं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया। अब गुरु नानक देव की आत्मा नहीं थी, लेकिन जैसी भक्त की भावना होती है उसके अनुसार शिव बाबा हमारे द्वारा वो साक्षात्कार कराते हैं। तो बस उसने तो देखा, बावरा हो गया, रह गया, अरे गुरुजी मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, ओहो कितना बड़ा मैं अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, और मैं तो आपकी हत्या करने जा रहा था, मुझे माफ करो गुरुजी, माफ करो। बस बहुत रोता हुआ बाबा के चरणों में छुरी रख दी और वो वहां से पश्चाताप करता चला गया। तो देखो शिव बाबा ने भक्त की इच्छा के अनुरूप उसे साक्षात्कार कराया। ऐसे ही अभी यही समय आ रहा है जब अनेका अनेक भक्त आत्माएं आएंगी। अब ब्रह्मा बाबा तो उस नाम रूप में नहीं है, तो बस आएंगी, बाबा ने कहा है कि रोती हुई आत्मा आए, आप उसके स्वरूप को बदल दो, वो हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति में स्थित होती हुई चली जाए। कैसे होगा ये? अग्नि का गुण होता है जो अग्नि रूप को परिवर्तित कर देती है। सूर्य का गुण, सूर्य प्रकृति में अग्नि का स्वरूप है, वो भी स्वरूप को बदल देता है। जब सूर्य उगता है संसार का स्वरूप रात काली अंधकारी अंधकारमय होता है, उसका संसार का स्वरूप ही बदल जाता है। सूर्य के आते ही प्रकाश हो जाता है, संसार में उजियारा हो जाता है। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां फ्रेशनेस, ताजगी, और जहां प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचता वहां कीड़े मकौड़े, अंधकार, बदबू, वो सब पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि आपका स्वरूप ऐसा हो अग्नि का, ज्वालामुखी अग्नि का स्वरूप, जैसे कि बस जो भी आत्मा आए उसका रूप बदल जाए। दो कशांतमय अगर है, सुखी शांतमय स्वरूप लेकर के वो आत्मा चली जाए। तो ये है सूर्य का गुण, जो है हर गुण का, प्रकृति का अपना अपना प्रभाव होता है। तो बाबा ये अभी हम बच्चों से ये चाहता है कि हमारी ऐसी स्थिति हो। ब्रह्मा बाबा की ये स्थिति हमने देखी, मन में संकल्प हुआ, बस एक बार दो बार नहीं, सारे दिन में 6-7 बार जो संकल्प हुए बाबा के सम्मुख गए। नॉर्मल केस में तो क्या होता था, बाबा से जब हम मिलते थे साकार में, बस बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे, जैसे बाहर चित्र भी लगा हुआ है ना, आओ मीठे बच्चे। और बाबा में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि बस हम जैसे खींचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी वंडर तो यही होता था, नए नए बच्चे होते थे आत्मअभिमानी स्थिति में, अभी भी अनुभव उसमें स्थित होने में समय लगता है, लेकिन बाबा ने आत्मिक स्थिति का अभ्यास इतना पक्का किया हुआ था। हम सब ने पढ़ा है, बाबा ने डायरी में भी लिख लिख के कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है, जसोदा बाबा की युगल का नाम था, नारायण लड़के का, सब सुना है आप सब, निर्मल शांता दादी निर्मला। तो इतना पक्का कि बाबा जिसको भी देखता था, दृष्टि देता था, भले थोड़े समय के लिए भी वो आत्मा अशरीरी विदेही हो जाती थी। फिर जब है विदेही हो जाती थी, फिर बाबा ऐसे थपथपाता था थोड़ा, हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे, फिर जैसे कि हम देह में खींच के आते थे। कोई आत्मा जाती नहीं थी, लेकिन विदेही अशरीरी स्थिति का अनुभव बाबा ये सहज रीति से करा देता था। फिर मुंह में टोली खिला के हालचाल पूछ के एक जाता था, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था, ऐसे मिलते थे। और बाद में तो जब और शरीर छोड़ने से 2-3 वर्ष पहले से ही डॉक्टरों ने भी बोला था कि बिल्कुल पास में आने से इन्फेक्शन लगने का वो होता है, तो बस दूर से ही सब मिले, तो बाबा ये दूर से ही अनुभव कराता था। बस दृष्टि दी और दृष्टि देते ही जैसे अशरीरी अवस्था का सब अनुभव करते थे। तो ये बाबा का दूसरा अन्य बात कि हम सब भी अपने इस अभ्यास को इतना पक्का किया हुआ हो कि जो भी आत्मा हमारे सम्मुख आए वो आत्मा अशरीरी स्थिति का अनुभव कर ले। एक बाबा की ये बात जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में मिलती थी। और बाबा में क्या देखा कि साथ में बाबा ने भी कदाचित ये अनुभव किया, भक्ति मार्ग में भी हम सब कहते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, मन भाग जाता है, टिकता नहीं है, अक्सर करके ऐसा बोल देते हैं। शायद बाबा ने भी 1936-37 में ऐसा कुछ अनुभव किया होगा। बाबा ने क्या करा फिर मन को कंट्रोल करने के लिए, जो मन जीते जगत जीत की बात बाबा कहते हैं, बाबा ने मन को पत्र लिखा, बहुत वंडरफुल पत्र। उस पत्र की कॉपी बाबा ने तो सिंधी में ओरिजिनल लिखा था, लेकिन हमारे सीनियर दादा आनंद किशोर दादा इन सब के पास वो सिंधी में लिखा पत्र था, उसकी हिंदी कॉपी करके हम पुराने भाइयों को उन्होंने बाबा का उस पत्र की कॉपी दी। बड़ा वंडरफुल पत्र, मन को बाबा ने पत्र लिखा, सुना होगा आपने, हाँ, हे मन मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और जिधर जिधर तू भागता रहा मैं आत्मा राजा होके भी तेरे पीछे पीछे भागती रही, और तू बलशाली हो गया मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं, अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं आत्मा राजा पुनः अपनी शक्ति में स्वमान में स्थित हो गया हूं, स्थित हो रहा हूं, अब मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे बाबा ने मन को ऑर्डर किया, ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे मन के साथ साथ भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मन मंत्री बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक, तो तुम दोनों ने मिलकर के मुझ आत्मा को राजा को इतना कमजोर कर दिया कि बस मैं बलशाली बलहीन हो गया, तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपने समान में स्थित हो गई। तो देखो बाबा ने ये करा, और उसके बाद फिर बाबा का मन कहीं भागा नहीं, और फिर बाबा का बस ऐसी स्थिति हो गई कि बाबा जिसको भी देखता था उसका मन अगर भटक भी रहा है ना, स्थिर हो जाता था थोड़े समय के लिए। जैसे हम बाबा के पास जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, अब बस बाबा के सम्मुख जाते ही बाबा की दृष्टि ली, मन स्थिर हो जाता था, सब भूल जाते थे। ये है मन जीते जगत जीत की निशानी, और ये बाबा का ये अनुभव किया। तो अभी बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि हम चाहते हैं मन को ऑर्डर करें, मन को अपने वश में रखें, लेकिन चाहते हुए भी मन भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो हैं, लेकिन पहले हम अपने स्वमान में स्थित नहीं होते। हम स्वमान में स्थित होकर ऑर्डर करेंगे मन को, तो मन हमारी सारी बात मानेगा। जैसे कोई लौकिक में भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति भी है, जब तक अपनी सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब वो सीट पर नहीं रहता, रिटायर हो गया, कोई ट्रांसफर हो गया, यहां उसकी पावर नहीं है, जब तब कोई भी उसकी बात नहीं मानता, सब बस उसको दूर से ही जैसे सलाम करते हैं। यही बात आज हम की है, हम बच्चों की भी है। हम बच्चे चाहते तो हैं, लेकिन समान में की सीट पर बैठ करके हम मन को ऑर्डर नहीं देते। तो आज बाबा ने बहुत सम्मान दिए हुए हमें, हम पहले अपने को सम्मान की सीट पर सेट करें। ओह, मैं वही विजयी रतन हूँ, कलप पहली वाली विजयी आत्मा हूँ, बाबा आपने ही मुझे कलप पहले भी विजयी बनाया था, माला का मणका बनाया था, अभी भी आप हमें बना रहे हो, मैं वही विजयी आत्मा हूँ। बाबा हम आपकी मस्तक मणि हैं, हम आपकी दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, बाबा हम आपके नैनों में समाये हुई वही कलप पहले वाली आत्माएं हैं। बस पहले हम अपने समान में स्थित हों, उसके बाद अगर हम किसी भी शक्ति को ऑर्डर करते हैं, किसी भी गुण को ऑर्डर करेंगे, आप देखोगे दौड़ता दौड़ता हमारे पीछे आएगा। मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मानो हम चाहते हैं समाने की शक्ति आए, मन को बस बिना समान में स्थित हुए अगर हम चाहेंगे, बार बार हम कुछ शुद्ध संकल्प लाएंगे फिर मन भाग जाएगा, कुछ शुद्ध संकल्प लाएंगे फिर मन भाग जाएगा, लेकिन पहले हम समान की सीट पर स्थित हो करके अच्छी तरह हम अपने को उस सीट पर सेट करें, उसके बाद हम उस शक्ति का आह्वान करें, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, या जो भी शक्ति की आवश्यकता हो, फिर देखो कैसे वो शक्ति मानती है, ऑर्डर मानती है। तो एक ये बाबा का और देखा हमने, और क्या देखा बाबा, एक एक बाबा ने कहा है कि खजाने तो बहुत बाबा ने दिए हैं, अनेक अनेक खजाने गिनाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा है विशेष खजाने कौन से हैं, जो बाबा हमेशा बोलता है कितने खजाने हैं, हाँ हाँ ठीक बोला, संकल्प और समय का खजाना। तो ये कहने तक ही न रहे, ये हमारे जीवन का अंग बन जाए, समय का खजाना। हम कहते तो हैं, जो बाबा कहता है कि ये अपना कोई संकल्प कोई सेकंड वेस्ट न जाए। बाबा का भी ये होता था, बाबा से मिलने के लिए जब पार्टियां आती थी, वर्ष भर आती रहती थी, तब तो कोई बात नहीं थी कि कोई खास सीजन है, बाबा यहीं रहते थे साल भर, तो छोटी पार्टी होती, एक दो लोग होते थे तो बाबा के कमरे में मिल लेते थे, अगर और चार पांच होते थे तो बाबा की झोपड़ी में मिल लेते थे, और बड़ी पार्टी 10-12-15 होते थे तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, तब और कोई हॉल तो थे नहीं, यही हॉल नहीं था, कुछ नहीं, हिस्ट्री हॉल सबसे बड़ा हॉल था, तो वहां पर बाबा मिला करते थे। लच्छू दादी होती थी, वो बाबा का टाइम दिया, भाई 10 बजे बंबई की पार्टी, 10:30 दिल्ली की, 11 बजे कलकत्ता की, ऐसे अलग अलग जगह के जो पार्टियां होती थी उनको समय दिया हुआ होता था। पार्टी आती थी, ब्राह्मण ही पार्टी को लेके आते थे, बस देखती थी बाबा अपने अपने विचारों में मगन है, जैसे कि बस आंख खुली हुई है लेकिन जैसे जो बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखा, ऐसी स्थिति। और बस ब्राह्मण ही आई, बस फिर वो बोलते थे बाबा बाबा मैं ये फलानी पार्टी लेके आई हूँ। बाबा को कभी कभी जैसे जर्क जैसा ऐसा भी अनुभव होता था। अच्छा बच्ची, अच्छा पार्टी लाए हो, आओ आओ बैठो आओ। फिर बाबा सारा समाचार हालचाल पूछते थे। तो देह में आने का और देह से न्यारे होने का अभ्यास ये बाबा ने पक्का किया होता था। जब कोई आए, कार्य हुआ, पार्टियों से मिलना है, जैसे बाबा देह में आया। कोई आत्मा देह से अलग नहीं हो जाती, लेकिन हम अपने विचारों को जैसे कि न्यारा कर ले, जहां हम चाहें अपने विचारों के आधार पर, जो बाबा अभी कहते हैं भाई पांच स्थानों पर, कभी परम धाम चले जाओ, कभी आदि अनादि, कभी भक्त के रूप में द्वापर युग में, कभी संगम युग पर आ जाओ, आदि आदि। तो बस बाबा बुद्धि से जैसे लगता था जैसे यहां पर शरीर रूप से यहां है, लेकिन बुद्धि से न्यारा है। एक बाबा का ये अनुभव, ये हम बच्चों को खास करना है अभ्यास। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चारों तरफ त्राही त्राही की अवस्था होगी, स्थिति होगी, तो फिर ये ही अभ्यास काम में आना है अंत समय में। जब आए देह में, आए पार्ट बजाया, देह से न्यारे हो जाए। और क्या साथ में देखा हा? हिस्ट्री हॉल में आप जाओ, अभी तो थोड़ा शायद शिफ्ट कर दिया है, पहले क्या होता था ऐसी तीन संदलियां पड़ी थी और एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा होते थे, बीच की संदली जो होती थी वो बच्चों के लिए, जब पार्टी आती थी एक एक बच्चा अपना अनुभव सुनाता था, और जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले हर एक अपने अनुभव सुना करके अब मैं क्या लक्ष्य लेकर के जा रहा हूँ वो सब सुनाते थे। बाबा मामा के बीच में ऐसा अनुभव होता था जैसे कि सब दुनिया से हम बिल्कुल सेफ ऐसी जगह बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में जब बाबा के सम्मुख होते थे, बैठते थे, हम देखते थे बाबा को कई बार बहुत बहुत खांसी आती थी। इतनी आयु थी 90, 91, 92, 93 ईयर की आयु में बाबा ने शरीर छोड़ा। उस समय यहाँ पर सर्दी भी बहुत होती थी, बहुत सर्दी। तो बाबा 18 जनवरी को सुबह मुरली नहीं चलाई, बाबा 18 जनवरी की शाम को मुरली चलाई, जो मैंने आपको बताया। और ऐसे समय में जब ऐसी स्थिति होती थी, कई बार खांसी आती थी, बाबा कहते थे मैं बाबा को बोलता हूँ, शिव बाबा को, कि बाबा ये मेरी सखी है, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें चुकतू करना है, हर एक आत्मा को अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना है, मैं इसमें क्या करूंगा। इस रीति से, और बाबा कहता था कई बार खांसी आती थी, आंख में गीली हो जाते थे, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा कहता था हमारी आंतरिक स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो बाहर की परिस्थिति को भी बदल दे। बस पास में चित्र रखा होता था, बाबा कहता था अरे बच्चे हाँ, बस उसको श्री कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का, लक्ष्मी ना, बच्चे देखो आज ये पुराना शरीर है, पुरानी है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। अरे बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी में तो बच्चों को क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए ऐसे, ये बाबा करके बताता था। इतनी खुशी हो, चेहरे पर भी बाबा की एकदम खुशी की लहर आ जाती थी। तो ये हम बच्चों को सीखना है, क्योंकि मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सबके पेपर तो आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति में भी कैसे हम अपने को खुश रखें, प्रैक्टिकल में बाबा का देखते थे। बस इतने बड़े बड़े ऐसे भी समाचार आते थे, कहीं ये हुआ वो हुआ, बस सेकंड सुना बाबा ने, चलो बच्चे कोई बात नहीं ड्रामा, फिर बाबा खुशी की लहरों में लहरा रहा होता था, ऐसा देखा। और साथ में क्या, जब बाबा ने ना अंतिम समय बाबा का ये देखा, उस दिन बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन 18 जनवरी की आप मुरली सुनो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि नॉर्मल केस में अक्सर बहुत पुराना शरीर था, आयु ज्यादा थी, तो वो सब आवश्यकता महसूस होती थी। लेकिन 18 जनवरी की रात्रि की मुरली में एक बार भी ऐसा, वो इस बात का प्रतीक है, कर्मातीत स्थिति का प्रतीक। कर्मातीत स्थिति जब आत्मा की होती है उस समय शरीर के कर्म भोग जैसे सब समाप्त हो जाते हैं और योग बल जो है कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये बाबा का देखा कि बस एक बार भी न कोई खांसी आई, न कोई समस्या हुई, और बाबा के अंतिम उस दिन। तो हम बच्चों का भी जो शरीर के कर्म भोग हैं उनसे हम अशांत न हो, दुखी न हो, क्योंकि बाबा ने कहा है अब बच्चों के सामने दो पेपर विशेष आने हैं। कौन से दो पेपर? एक है शरीर का पेपर और दूसरा है परिवार का पेपर। शरीर का पेपर आएगा क्योंकि हरेक की वानप्रस्थ अवस्था है, युवान ये न समझे हमारे सम्मुख नहीं आएगा। आत्मा की तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था है और आत्मा ने ये शरीर जो लिया है 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुक तो होना है, इसीलिए ये पेपर शरीर के द्वारा जो पेपर आएंगे उसके लिए बस पेपर हो। लेकिन हमें अगर शरीर से न्यारा होने का अभ्यास होगा, जैसा बाबा का देखा ऐसे अभ्यास होगा, तो शरीर के जितने भी कर्म भोग होंगे उसका दुख का अशांति का हमें अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अनुभव तो आत्मा करती है ना। और आत्मा अगर न्यारी होने का अभ्यास हुआ, शरीर में जितनी भी व्याधि होगी, और इसीलिए कहा जाता है आदि व्याधि उपाधि, कोई भी समस्याएं हो इन सब का उपाय है समाधि, आत्मा समाधिस्थ हो जाए, उसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो एक ये शरीर का पेपर, दूसरा पेपर परिवार का पेपर है? ये बाबा ने खास बताया है। और बस बहुत ऐसे पुरानी भी आत्माएं होंगी, बाबा ने कहा इतने पुराने पुराने थे वो भी चले गए, जो बाबा मामा को भी ज्ञान देते थे, संदेश लाते थे, वो भी नहीं रहे। और भी तो कई, जब पुरानी आत्माओं के हम कोई ऐसा जीवन व्यवहार देखेंगे, कोई बात मन में संकल्प आएगा, अरे ये 25 साल 40 साल पुराने 50 साल इनमें ये बात, तो बस आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो हमारी नींव भी हिला सकता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, एक तो बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को हम एक काल की दृष्टि से न देखें, उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखें। वर्तमान में इस आत्मा का ये पार्ट है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। बाबा ने कहा है मेरा एक एक बच्चा विशेष है, और जो मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी है वो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उससे भी वो श्रेष्ठ है, ऊंच है, महान है। क्यों? क्योंकि बाबा ने उसमें कोई ना कोई विशेषता देखी है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, और वो अपने समय पर भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। तो इसीलिए किसी का भी कोई पार्ट देख करके हमारे व्यर्थ संकल्प न चलें, बस हम उसी काल की, तीनों कालों की दृष्टि से ये वही आत्मा है। बस 5000 वर्ष पहले भी सतयुग के आदि में यही डबल ताजधारी थी, महान थी, अभी इसका ये पार्ट है, फिर से ये महान बनके बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। और जिसको भगवान ने चुना है, भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान की चुनी हुई आत्मा, एक एक बच्चा जो भी ब्राह्मण वत्स है, भगवान ने त्रिकालदर्शी जो बाबा है उसने चुना है, इसलिए समय पर वो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। तो हम कौन होते हैं, अगर हमें कोई संशय आता है इसका मतलब हम बाबा को कहते हैं बाबा आपका ये सिलेक्शन गलत है, आपने ये ठीक नहीं चुना इस आत्मा को, अगर उस आत्मा की हम कोई भी कमी कमजोरी हमारे ध्यान में आती है। इसलिए बाबा ने कहा है परिवार का पेपर बहुत बड़ा है, इस जगह साक्षी हो करके बस पार्ट देखते चलो। कोई फिल्म भी होती है, पार्ट होता है सबका, पूरे फिल्म में एक जैसा पार्ट थोड़ी होता है, सबका पार्ट अलग है, कोई कॉमेडियन है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई नाचने वाला है, गाने वाला है, तभी तो वैरायटी नाटक होता है। ये सृष्टि तो सबसे बड़ा वैरायटी नाटक है, इसलिए इसको देख करके हम कभी भी कोई संशय न लाए। तो इन दोनों पेपर की भी हम पूरी तैयारी करते हुए चलते रहे। और साथ में क्या देखा बाबा ने, अंतिम जो प्रकृति जीत की बात अब आपको विशेष बता देते हैं। 18 जनवरी को बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा बस हॉल से बाहर आए, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। पहले बाबा ने ये शब्द कभी नहीं बोले। तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे ना, हमें भी आभास होगा कि हाँ अब हमारा ये पुराना शरीर से सारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, अब हम भी बाबा आपके पास आ रहे हैं। बस इसीलिए बाबा कहता है पहले से ही सब जगह समेट करके रखो, बस कोई भी ऐसा काम फैला हुआ ना हो जो अंत समय में हमारी बुद्धि भागे वहां पर, नहीं कोई भी ऐसी जगह ना हो पहले से ही हमने अगर समेटा हुआ होगा, जैसी बुलावा आएगा आया परवाना बना बहाना, बस हम भी जैसे हाँ बाबा आपके पास आ रहे हैं, तभी तो अंत मते सो गति होगी। उसके बाद बाबा कमरे में गए और जाके दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने शरीर सहज रीति से मक्खन से बाल की तरह एकदम छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखने को मिला, क्या 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की पूरी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद 2 बजे के करीब बाबा का संस्कार किया गया। उससे पहले बाबा को हम लोगों ने जब स्नान वगैरह कराया, बस देखो ये 5 तत्वों का बना शरीर, और जब आत्मा शरीर छोड़ के नॉर्मली जाती है कुछ घंटों में ही शरीर जैसे स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, लेकिन इतने 65 घंटे के बाद भी बाबा के शरीर में बहुत काफी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बनी हुई थी, शरीर कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध शरीर में नहीं थी, बस ऐसा लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह उठ के कहेगा आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, 5 तत्वों के बने कि जो प्रकृति का भी वो है, उस प्रकृति के तत्वों को से बने शरीर को भी बाबा ने इतना पावन बना लिया था, पवित्र बना दिया था, एक तो वो अंत तक साथ दिया पूरा, और साथ ही साथ ये शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा सफेद गोरा रंग जैसे बाबा का था वैसा ही, कोई कालापन नहीं आया। ये प्रकृति जीत हम बच्चों को भी बनना है, क्यों? क्योंकि यही तो प्रकृति है जो सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक हमारा साथ देगी, भिन्न भिन्न नाम रूप में भिन्न भिन्न शरीरों के द्वारा हम पार्ट प्ले करेंगे। तो यहां पर अगर हमने प्रकृति के तत्वों के साथ मित्रता नहीं की, ये प्रकृति हमारा साथ कैसे देगी? तो जरूरत यह है प्रकृति के तत्वों के साथ हम मित्रता करें, दोस्ती करें, क्योंकि प्रकृति के तत्वों की जब हलचल होगी, अगर ये हमारे मित्र होंगे तो समय पर मित्र जो है मित्र की रक्षा करता है, मित्र के प्राण नहीं लेता। जितना भी फ्लड आएगा, अर्थ को एकाएगा, वो हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बनेंगे, अगर हमने अपने संस्कारों को इन तत्वों के संस्कारों से मिलाया हुआ होगा। तो देखें हाँ पृथ्वी है तत्, बाबा ने कहा अंत में बड़ा पेपर अर्थ को एक का होगा, भूचाल आएंगे चारों तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? हाँ सहन शक्ति, ये तो है। सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी का दातापन का, पृथ्वी सदा देती है, एक बीज पृथ्वी में बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं, दाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है आप बच्चे भी सदा दाता रूप होकर रहो, कोई भी व्यक्ति संसार का आपके सम्मुख आए खाली हाथ ना जाए, लेकर के जाए। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है कि रोटी कपड़ा भोजन ये कोई चीज हो, नहीं इस चीज की तो लिमिटेशन है, लेकिन हर एक के कोई भी हो शुभ भावना शुभकामना प्रेम स्नेह आदर सहयोग, ये जितने भी दैवी गुण है ये हमारे एक एक कर्मेंद्रियों से झलकने चाहिए। जो बाबा ने कहा है बस ये दिव्य गुण हमारे पॉकेट में भरे रहे हमेशा। तो जितने हम ये दाता होके चलते रहेंगे ना, तो अंत समय में जितने भी हलचल होगी, पृथ्वी हिलेगी, भूचाल आएंगे, लाखों लोग मरेंगे, लेकिन पृथ्वी का इस संस्कार के साथ हमने अपना संस्कार मिलाया हुआ होगा, पृथ्वी कभी भी हमारे प्राण लेने के, दुख देने के निमित्त नहीं बनेगी, क्योंकि उसे हमने अपना फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया, दाता है पृथ्वी, हम भी दाता होकर के चलते चले। ऐसी जल का मुख्य गुण क्या है? शीतलता। साथ साथ जल का एक मुख्य गुण है एडजस्टमेंट का। जल को जिसमें लो, अभी जैसे गिलास में लिया, गिलास में समा गया, थाली में लोगे थाली में समा जाएगा, कटोरी में लोगे कटोरी में, चम्मच में लोगे चम्मच में समा जाएगा। इतना फ्लेक्सिबल नेचर है। ऐसे हमारी नेचर भी ऐसी फ्लेक्सिबल हो, एडजस्टमेंट वाली हो, हम हर व्यक्ति से एडजस्ट होकर चल सके। ऐसा न कहे कि इनके साथ तो एडजस्ट होकर चलना मुश्किल है, इनके साथ एडजस्ट होकर चलना आसान है, सहज है। नहीं है, हरेक के साथ एडजस्ट, जल हरेक के साथ एडजस्ट हो जाता है। जैसा पात्र होता है वैसा उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इतने हमारे संस्कार में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोमलता हो, कड़े संस्कार ना हो कि किन्हीं के साथ एडजस्ट होके चल सके। और उसका लाभ क्या होता है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जल सदा आगे बढ़ता रहता है। जल के सामने कोई बड़ा और विशाल रॉक भी आई, पत्थर आई, उसके लिए वो रुकेगा नहीं, वो अपना रास्ता बना बनू के आगे बढ़ता रहेगा। भले वो समस्या, वो रॉक, वो चीज वहां की वहीं रहे, वो आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हम अपने संस्कारों को चेक करते चले, कोई कड़ा संस्कार, पुराना संस्कार मेरे आगे बढ़ने में बाधक तो नहीं है। ये और प्रकृति जीत का लक्षण है, एक एक तत्व का। वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। भारी चीज नीचे आती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। हम भी जीवन में सदा हल्के रहे, कोई परिस्थिति आई, पेपर आए, उसमें भारी ना हो जाए। अक्सर करके कोई पेपर आता है, परिस्थिति आती है, हम भारी हो जाते हैं, ना हमें दूसरे से बोलने की जिद इच्छा होगी, बस अकेलापन ही लगेगा। वैसे मानसिक रूप से अकेला अच्छा है, लेकिन जब खाने पीने का कोई भी इच्छा नहीं, अकेला होने का, तो वो अकेला वैसा नहीं। जो बाबा कहता है, हल्के रहेंगे उड़ते रहेंगे ऊपर, भारी होंगे नीचे आ जाएंगे। तो अगर ये हल्के होने का वायु के साथ, वायु के इस तत्व के साथ हमने अपने गुण को मैच किया, हल्का रहने का गुण, तो कभी भी जितने साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, ये कभी भी हमें भारी नहीं करेंगे, हमें हराएंगे नहीं। ये प्रकृति जीत का लक्षण है। जो बाबा में देखा, बाबा के सम्मुख जो भी आता था ना, हर एक को ये लगता था, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती थीं, आओ बच्ची आओ, बहुत तुमने भक्ति की है, भगवान को ढूंढा है, थक गई हो, आओ बच्ची, बाबा तुम्हारा ये बुद्धि रूपी पैर जैसे ना ये दबाता है। इतना बाबा, अंतिम दिन भी 17 जनवरी को हमने देखा, हरियाणा से कुछ माताएं आई हुई थी, बिल्कुल अपढ़, कोई भी वो नहीं, लेकिन बाबा उनको इतना खुशी में भर रहा था, आओ बच्ची आओ। हम लोग जाते थे, बाबा फोटो खींचा, नहीं नहीं बच्चे क्या फोटो खींचना, शिव बाबा का फोटो खींच सकते हो क्या? लेकिन माता, आओ आओ बच्ची आओ आओ, आओ बाबा तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाता है। देखो हरेक का दिल लेने की बात, किस तरीके से हरेक को ये महसूस हो बाबा मेरा है। ऐसा होता था, ऐसे ही हम एक एक बच्चे से ये महसूस होना चाहिए, जो भी हमारा ब्राह्मण परिवार है, लौकिक है अलौकिक है, कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बीके हैं, भले ज्ञान में चले ना चले, लेकिन उन पर ये छाप रहे कि ये बहुत महान आत्मा है, श्रेष्ठ है। और फिर आकाश तत्व का क्या गुण है? आकाश का आकाश विशाल है, इतना बड़ा विशाल आकाश, और इस कारण से आकाश जैसी विशालता हो, बाबा कहते हैं फिराक दिल हो बच्चों, आकाश जैसी विशालता हो, और कोई भी हमें दूसरे का अवगुण हम अपने चित्त पर न धरे, हमारा किसी से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ना हो। आकाश का इस गुण को कैसे हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, दुनिया वालों ने यूज किया है, आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और वो बस उपग्रह, और जैसे सैटेलाइट होते हैं इधर से मोबाइल के द्वारा, टीवी, रेडियो, कोई भी चीज हो, एक से हम दूसरे से एक सेकंड में ही संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से क्या बोलचाल कर सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन एक एक बच्चे के साथ चालू रहे, तभी विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व की एक एक आत्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता क्या है वास्तविक जीवन में, कि जिनसे हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, हम जिनको चाहते हैं, जिनसे अच्छे संबंध होते हैं, उनसे हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ बात करने की दिल होती है, और जिनके प्रति डिसलाइकिंग होती है, उतना संबंधों में मधुरता नहीं होती, सामने से भी अगर आता होगा उसको बचा के, नजर बचा के निकल जाते हैं। विशालता आकाश जैसी विशालता नहीं। बाबा ये चाहता है, हर आत्मा के अपने संस्कार है, अपने गुण है, अवगुण है, लेकिन हम किसी भी आत्मा के इस प्रभाव में न बह जाएं, किसी के प्रति बहुत लाइकिंग, किसी के प्रति बहुत डिसलाइकिंग नहीं। हर एक आत्मा, अरे बाबा की चुनी हुई है, बाबा के रतन है, इसलिए हर एक आत्मा के साथ हमारे स्नेह के संपर्क हो, और उससे क्या होगा, हर एक से कम्युनिकेशन हो। कोई भी अगर हो, दूसरी आत्मा नहीं भी बोलती, आप सामने पढ़ो, हेलो भाई जी ओम शांति, हेलो बहन जी ओम शांति, एक बार आप बोलोगे, दो बार, तीन बार, और कुछ समय के बाद वो आत्मा सोचेगी हाँ इन्हें तो ये तो बोलेंगे ही, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, और ये संबंधों की कटुता समाप्त हो जाएगी। हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं पहले वो बोले, नहीं, कहीं पर अगर ऐसा हो, इससे क्या होगा, जितनी आकाश जैसी विशालता होगी, तो अंत समय में आकाश मार्ग से आने वाले जो भी व्यवधान है, बम है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, जो बहुत विनाश का कारण बनेंगे, वो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश जैसी विशालता हमने अगर अपने अंदर धारण कर ली है, उसको भी हमने अपना मित्र बना लिया है, और इस कारण से ये एक एक तत्व के आप गुण देखोगे, हर एक के कम से कम 10-10 गुण है, उस पर मंथन करके, यहां तो समय के अभाव में हम नहीं बता पाते, लेकिन एक हिंट दे दिया, एक एक तत्व के आप गुण देख के ये धारण करते चलेंगे, तो ये प्रकृति जीत का लक्षण है। और ये बाबा का अंत में देखा, इतने देर तक बाबा का शरीर रखा रहा, लेकिन वो शरीर अंत समय तक भी इतना शक्ति प्रदान करता रहा, उस शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई व्यधान पैदा नहीं हुआ। तो ये प्रकृति जीत, तो अंदर की प्रकृति का तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, लेकिन रोज हम अपने एक एक गुण को मैच करते समय चले प्रकृति के साथ, देखो क्या क्या एक एक तत्व का गुण है, यहां तो एक ही बताया, लेकिन एक 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 गुण को मैच करते चलेंगे, और वो गुण को हम धारण करते चले रोज प्रकृति के सामने खड़े होकर के, कुछ थोड़े समय के लिए भी उसके अंदर हम उसको शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते चलेंगे ना, तो बस वो प्रकृति भी हमारी मित्र बन जाएगी, और मित्र जो है समय पर मित्र की रक्षा करता है। तो आओ आज हम सब यही आवाहन करें, प्रकृति के तत्वों को शुद्ध करके, अपनी आत्मा को तो हम शुद्ध कर ही रहे हैं ज्ञान योग के द्वारा, लेकिन इन प्रकृति के तत्वों को भी हम आवाहन करके उनको शुद्ध करते चलें, और इनको अपना मित्र बनाते चलें, तो बस अंत समय ये हमारे सहयोगी बन करके हमें संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। है? वो बताया।
मिले।